ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय
ग्रंथा श्रीमद्भागवतम सातवां स्कंध चौथवाध्याय श्लोक संख्या आठ
यावाद्रियेत जठरम तावास्त्वं हि देहिनाम अधिकं योऽभिमन्येत सस्तेनो दण्डमर्हति।
धन्यवाद। शब्दात अनुवाद एवं तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद के यावत जितना भ्रिये भरा जा सकता है जठरम पेट तावत उतना स्वत्वम स्वामित्व ही निश्चय ही देहिनाम जीवों का अधिकम इससे अधिक या जो अभिमान्यता स्वीकार करें सह वह स्तेन जो दंडम दंड के अर्हति योग्य है। शरीर के पालन के लिए जितने धन की आवश्यकता है उतने के स्वामित्व का ही अधिकार रखना चाहिए, किंतु जो इससे अधिक का स्वामी बनने की कामना करता है उसे चोर मानना चाहिए और प्रकृति के नियमों द्वारा दंडनीय है। रिपीट करेंगे, करीब शरीर के पालन के लिए जितने धन की आवश्यकता हो उतने के स्वामित्व का ही अधिकार रखना चाहिए, किंतु जो इससे अधिक का स्वामी बनने की कामना करता है उसे चोर माना चाहिए और प्रकृति के नियमों द्वारा दंडनीय है। तात्पर्य ध्यान रूप सुनिए कृपया करके। ईश्वर की कृपा से हमें कभी कभी काफी मात्रा में अन्न मिल जाता है अथवा सहसा कहीं से अमीदान प्राप्त हो जाता है या व्यापार में अप्रत्याशित लाभ हो जाता है। इस प्रकार हमें आवश्यकता से अधिक धन मिल सकता है तो फिर इसको किस प्रकार खर्च किया जाए? केवल बैंक में बचत बढ़ाने के लिए धन का संग्रह करने की आवश्यकता नहीं होती। भगवद्गीता 16:13 में ऐसी मानसिकता को आसुरी कहा गया है। इदा मध्य मया लग्नम एवं प्राप्य से मनोरथम इदम अस्त तभी में भविष्यति पुनर्धनम। आसुरी लोग सोचते हैं आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं के अनुसार मैं और अधिक धन प्राप्त कर लूँगा, ऐसे समय मेरे पास इतना है और भविष्य में यह इससे भी अधिक हो जाएगा। असुर को तो इसी की चिंता रहती है कि आज मेरे बैंक में मेरा कितना धन है और कल ये कैसे बढ़ पाएगा, किंतु शास्त्रों द्वारा या वर्तमान युग में सरकार द्वारा धन के अनियंत्रित संग्रह की अनुमति नहीं दी जाती है। वास्तव में जिसके पास अपनी आवश्यकता से अधिक धन हो उसे धन को कृष्ण पर खर्च करना चाहिए। वैदिक सभ्यता के अनुसार इस अतिरिक्त धन को कृष्ण भावनामृत आंदोलन को दे दिया जाना चाहिए, जैसे स्वयं भगवान ने भगवद्गीता 9:27 में आदेश दिया है, यत् करोषि यदश्नासि यजुजोषि दासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्करिष्यमि मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करो, जो भी खाओ, जो भी भेंट करो, दान में दो और जितनी भी तपस्याएं करो उन सबको मुझे अर्पण के रूप में करो। गृहस्थों को अपना अतिरिक्त धन कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लिए ही खर्च करना चाहिए।
ग्रस्तों को चाहिए कि विश्व भर में भगवान के मंदिरों का निर्माण तथा भगवत गीता या कृष्ण भानामृत के प्रचार के लिए दान दें। श्रवण भक्तो भिक्षणम अवतार कथामृतम। शास्त्रों में, पुराणों तथा अन्य वैदिक साहित्य में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन करने वाली अनेक कथाएं हैं, जिन्हें हर एक को पुनः पुनः सुनना चाहिए। उदाहरणार्थ मान लो कि हम प्रतिदिन पूरी भगवद्गीता के समस्त 18 अध्याय का पाठ करते हैं तो हमें प्रत्येक बार नई व्याख्या मिलेगी। दिव्य साहित्य का यही गुण है। इसलिए कृष्ण भानामृत आंदोलन मनुष्य को अवसर प्रदान करता है कि वह अपनी अतिरिक्त आय को कृष्ण भानामृत के प्रसार द्वारा सारे मानव समाज के लिए लाभ हेतु व्यय करे। विशेष रूप से भारत में ऐसे सैकड़ों हजारों मंदिर हैं जिन्हें समाज के उन धनी लोगों ने बनवाया जो ना तो चोर कहलाना चाहते थे और ना ही दंडित होना चाहते थे। यह श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि बताया गया है कि जो आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह करते हैं वह चोर है और प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होगा। जो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक धन जोड़ लेता है वह अधिकाधिक भौतिक सुविधाओं का भोग करना चाहता है। भौतिकतावादी व्यक्ति अनेक कृत्रिम आवश्यकताएं उत्पन्न करते हैं और धनी उनके प्रलोभन में आकर और अधिक धन संग्रह करने का यत्न करते हैं। आधुनिक आर्थिक विकास की यही विचारधारा है। प्रत्येक व्यक्ति धन कमाने में लगा हुआ है और यह धन बैंक में रखा जाता है, तब बैंक द्वारा यह धन जनता को दे दिया जाता है। इस प्रकार चक्र में प्रत्येक व्यक्ति अधिकाधिक धन पाने में लगा हुआ है, जिसे मानव जीवन का आदर्श लक्ष्य खो जा चुका है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति चोर है, अतः वह दंडनीय है। जन्म मृत्यु के चक्र में प्रकृति के नियमों द्वारा दंड मिलता है। कोई भी व्यक्ति भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह संतुष्ट होकर नहीं मरता, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है। अतः मृत्यु के समय मनुष्य अत्यधिक दुखी रहता है, क्योंकि वह अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाता। तब प्रकृति के नियम के अनुसार उसे दूसरा शरीर मिलता है, जिससे वह अपनी अपूर्ण इच्छाएं पूरी कर सके। वह दूसरा जन्म लेकर दूसरा शरीर धारण कर स्वेच्छा से जीवन के ताप त्रय स्वीकार करता है। ओम अज्ञानस्य मिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाक्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। इस पुरुषोत्तम मास में भागवत श्रवण का और ज़्यादा अधिक महत्व बताया गया है। इस सातवें अध्याय के सातवें स्कंध का 14वां अध्याय है। इसकी शुरुआत में नारद मुनि से युधिष्ठिर महाराज ने ये प्रश्न पूछा कि जो लोग पारिवारिक जीवन में रहते हैं बिना वैदिक ज्ञानों का ज्ञान रखे, वैदिक साहित्य का ज्ञान रखे, और घर में रहने वाले इन हम लोग वेदों के आदेशानुसार सरलता से मुक्ति किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। याया देव ऋषि ब्रूही मादृशो ग्रह मूढ़धि। घर में रह रहे हैं और हमारी जो धी है, हमारी बुद्धि है, मूढ़ है। सो घर में रहने वाले लोग जो कि जीवन के लक्ष्य से परिचित नहीं है, ऐसे मूढ़धि लोगों का बड़ी आसानी से उनको मुक्ति कैसे मिल सकती है ना? तो इसके जवाब में नारद मुनि जी उत्तर दे रहे हैं और इस अध्याय का नाम रखा गया है आदर्श पारिवारिक जीवन। यानी कि इस अध्याय में बताए हुए नारद मुनि के आदेशों का पालन अगर गृहस्थ आश्रम में रहने वाले भक्त करते हैं तो उनका जीवन आदर्श पारिवारिक जीवन हो जाएगा। और आदर्श पारिवारिक जीवन जीकर इस संसार में वो इस जीवन के अंत में क्या प्राप्त कर लेंगे? मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, अपने असली घर बैक होम, बैक टू गॉड हेड, कृष्ण के धाम में जा सकते हैं। तो ये जो संसारिक जीवन, इस संसार का जो हमारे गृहस्थ आश्रम का जीवन है, पारिवारिक जीवन है, एक तरह की नेट प्रैक्टिस है। यहाँ पर हम जैसी प्रैक्टिस करेंगे, सही प्रैक्टिस किया, सही आदर्श, जो आदर्श नारद मुनि बता रहे हैं उसके अनुसार अगर जीवन जिएंगे तो हमारा मोक्ष सुनिश्चित है। इसलिए ये अध्याय और ये एक एक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। आप कोई भी फैमिली चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाव क्या होता है? क्या चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है। और हम देखते हैं कि इस फैमिली को मेंटेन करने के लिए सब लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, पैसा तो सबको अच्छा लगता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि पैसा कमाने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, इतने रिस्क लेते हैं, चोरी करते हैं, रिश्वत लेते हैं, डकैती डाल लेते हैं, कई लोग नौकरी करते हैं कैसी कि घर छोड़कर गांव छोड़कर शहर में चले जाते हैं, विदेशों में चले जाते हैं, कई लोग डबल डबल ओवर टाइम करते हैं, नौकरी करते हैं, कई लोग अपने जान पे खेल के धन कमाने जाते हैं, बॉर्डर पर लड़ने चले जाएंगे, ये नहीं कि भारत माता से प्रेम है कुछ धन मिलेगा, जान देने को तैयार है कुछ धन कमाने के लिए। इसलिए बोलते हैं मनी स्वीटर देन हनी, इतना पैसे की इतनी आवश्यकता है। और अब जब जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है, ये पैसा हर किसी को लगता है बहुत कम है ना, इतनी आवश्यकताएं बढ़ गई हैं। यहाँ तो लिखा हो जो अधिक धन है वो दान में देना चाहिए, और बोले अधिक यहाँ तो पूरा ही नहीं होता, इतनी किस्तें भरनी पड़ती हैं, आप बोल रहे हैं अधिक धन है ही नहीं, हम तो वैसे ही बच गए, हमारे पे स्ट्रोक लागू ही नहीं होता। ठीक है, तो लेकिन ये बात नहीं है, इसको बड़े तत्व से समझना पड़ेगा। देखिए वैदिक शास्त्र में बताया गया धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ बताए गए हैं, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। अब इसमें जो धर्म और मोक्ष हैं, वो इस पूरे पुरुषार्थ के आध्यात्मिक पहलू हैं, और काम और अर्थ इसके भौतिक पहलू हैं। यानी कि धर्म को अर्थ के पास रखा गया है, अर्थ को धर्म के साथ होना चाहिए और काम को मोक्ष के पास होना चाहिए। दूसरे शब्दों में अर्थ और काम को धर्म और मोक्ष के द्वारा इसको सीमित करना चाहिए, अति आवश्यक है। अगर धर्म और मोक्ष के बीच में इस अर्थ और काम को सीमित नहीं करेंगे तो आज के समाज में जो उपद्रव मचा हुआ है वैसा मचेगा। आज समाज में लोगों का लक्ष्य क्या है, अर्थ और काम, पैसा कमाओ और जितना ऐश कर सकते हो करो, और उसके लिए की आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं, कोई भौतिक इच्छाएं तो संतुष्ट होती नहीं, ये और इसी असंतुष्ट अवस्था में उनकी मृत्यु हो जाती है, और ऐसे लोगों को आसुरी बताया गया है, और अगले जन्म में उनको फिर से कष्ट भोगने पड़ते हैं। ये संसार ऐसे ही चल रहा है, चोरों का संसार बोला गया है इसको। प्रभात कहते हैं भगवद गीता के तीसरे अध्याय में, चोरों का संसार सुखी कैसे हो सकता है, सुखी हो ही नहीं सकता। तो अर्थ और काम के पीछे सब कुछ लगे हुए हैं, यही जीवन का लक्ष्य है। बहुत समय पहले हिंदी सिनेमा एक आई थी, ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट, सबसे बड़ा रुपया, सुना लगा ना, पुराने लोगों ने सुना होगा, सबसे बड़ा रुपया, ऐसे के तैसे रिश्तेदारों के सबके क्या है, सबसे बड़ा रुपया, यही जीवन का लक्ष्य है, कमाओ और इससे हम सुखी रहेंगे। समाज में प्रगति का मापदंड यही है कि इसके पास कितना अर्थ है और वो कैसे कितनी इच्छाओं की पूर्ति कर पाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं बताया गया, ये बताया गया है कि किस ढंग से हमें अर्थ को अर्थपूर्ण बनाना चाहिए, अर्थ का क्या मतलब है, धर्म का क्या मतलब है। इसी तरह का प्रश्न भागवतम के 11वें स्कंद में नारद मुनि से पूछा था वसुदेव जी ने। वसुदेव जी गए थे द्वारका में, तो भगवान के पिता नारद मुनि द्वारका में गए, और कृष्ण के पिता वसुदेव जी ने नारद मुनि से प्रश्न पूछा, यही प्रश्न कि पारिवारिक जीवन में रहने वाले लोगों का उद्धार कैसे होगा। हम देखते हैं वैदिक शास्त्रों में जो लोग पारिवारिक जीवन में रहते हैं उनको बहुत चिंता है, किस बात की चिंता है, हमारा उद्धार कैसे होगा। आजकल किसी भी व्यक्ति को यह चिंता नहीं होगी मेरा उद्धार कैसे होगा, वो सोचेगा मेरा उधार कैसे उतरेगा। अपने उधार के बारे में सोच रहा है, लेकिन उद्धार, मेरा उद्धार कैसे होगा, ये सोचते थे। वसुदेव भगवान के पिता, पृथु महाराज भगवान के शक्तिशाली अवतार, सब यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि हमारा उद्धार कैसे होगा। राजा निमि इतने वैष्णव कि मैं स्थूल धी व्यक्ति हूं, मेरा उद्धार कैसे होगा, क्योंकि जो गृहस्थ आश्रम में भक्त रह रहे हैं उनको कई कंप्रोमाइज करने पड़ जाते हैं, उनको डर लगता है कि मैं गलत कर रहा हूं तो मेरा मैं तो उसका सजा मिलेगी मिलेगी, तो मेरा उद्धार कैसे होगा, तो ये चिंता होनी चाहिए। थोड़ी बड़ी चिंता से हम सबके भले के लिए नारद मुनि से ये प्रश्न पूछा, तो नारद मुनि ने उत्तर दिया बिल्कुल इसी लाइन पे, धनम च धर्मे फलम यथो वै ज्ञानम सविज्ञान अनु प्रशांति ग्रहेशु युजन्ति कलेवरस्य मृत्युं न पश्यन्ति दुरंत वीर्यम्। संचित धन का एकमात्र उचित फल धार्मिकता है, धन का एकमात्र उचित फल धार्मिकता है, जिसके आधार पर मनुष्य जीवन की दार्शनिक जानकारी प्राप्त कर सकता है, जो अंततः परम ब्रह्म की प्रत्यक्ष अनुभूति में और इस तरह समस्त कष्ट से मोक्ष में परिणित हो जाता है। किंतु भौतिकतावादी व्यक्ति अपने धन का सदुपयोग अपने पारिवारिक स्थिति की उन्नति में ही करते हैं। वे यह नहीं देख पाते कि दुर्लभ्य मृत्यु शीघ्र ही उनके दुर्लभ भौतिक शरीर को विनष्ट कर देगी। कि धन का जो उचित फल है केवल धर्म है, और आज के कलयुग में क्या सोच रहे हैं कि धर्म का उचित फल धन है। मंदिर में लोग आते हैं, भगवान से इच्छाएं मांगते रहते हैं, धर्म का पालन इसलिए करते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। नहीं, धर्म का फल अर्थ नहीं होना चाहिए, अर्थ का उचित फल धर्म होना चाहिए। तो धर्म क्या है? क्योंकि लोगों को अक्सर मालूम है कि धर्म क्या है, इसीलिए ये सब भ्रांतियां हैं। धर्म का उपयोग तो लोग करते हैं धन कमाने के लिए। जब हमें मालूम चलेगा कि धर्म क्या है, इसकी क्या परिभाषा है, तब हम अपने अर्थ को वास्तव में अर्थपूर्ण बना देंगे। कहते हैं कि धन धन्य होता है भगवान की सेवा में, और जब ये अर्थ भगवान की सेवा में नहीं लगता, ये अनर्थ बन जाता है, कई दुखों का कारण। तो धर्म क्या है? श्रील प्रभुपाद जी अपने सभी कई तात्पर्य में बताते हैं, धर्म के मुख्यतः दो अर्थ है, एक हमारा कर्तव्य और दूसरा हमारी स्वभाव, हमारा मुख्य स्वभाव, अंतर्निहित स्वभाव, इनहेरेंट नेचर। ये दो मुख्य इसके अर्थ हैं। और हमारा कर्तव्य जो कि भगवान की आज्ञा के अनुसार है, धर्मम तु साक्षात भगवत परिणितम। और एक बद्ध जीव जो कि इस भौतिक जगत में है, उसके धर्म दो प्रकार के हो जाते हैं। कौन कौन से? शरीर का धर्म और आत्मा का धर्म। तब तक इस संसार में शरीर की आवश्यकताएं पूरी करनी है, लेकिन शरीर की आवश्यकताएं भी धर्म के अनुसार। अब भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने शरीर की तुलना किससे की है? आत्मा और शरीर की तुलना किसके साथ की है? कपड़े के साथ। मांसांश जीना नहीं यथा विहाय। अगर हम लोग ये जो कपड़ा डालते हैं शरीर के ऊपर, ये कपड़े के क्या मुख्य इससे लाभ होते हैं? कपड़े के क्या उद्देश्य होते हैं डालने के? ना, शरीर को ढकना, यानी कि इसकी रक्षा करना, सर्दी से, गर्मी से, बरसात से, यानी कि शरीर की रक्षा करना, और दूसरा इसको सुंदर बनाना अच्छे से, जैसे शरीर सुंदर लगेगा। आजकल तो लोगों का उल्टा कंसेप्ट है कि कपड़े उतार के सुंदर लगेंगे, लेकिन शरीर को सुंदर बनाने के लिए अच्छे कपड़े डालते हैं। तो यानी कि ये मनुष्य शरीर भी आत्मा के ऊपर एक वस्त्र के समान है। तो इस मनुष्य शरीर के क्या उद्देश्य हो गए? जो इस वस्त्र के दो उद्देश्य हैं, आत्मा की रक्षा करना और आत्मा को सुंदर बनाना। तो आत्मा की रक्षा जैसे हम कैसे करते हैं? चार नियमों का पालन करते हैं। आत्मा की रक्षा ये है कि अगली योनि में कुत्ता बिल्ली ना बन जाए, ये रक्षा इस हम चार नियमों का पालन करके। और आत्मा को सुंदर कैसे बनाते हैं? भगवान की सेवा की ओर अग्रसर करके, हम 16 माला का जप करके, ठीक है ना। और हमें अपने शरीर के पालन के लिए भी, इस कपड़े को पालने के लिए भी ऐसे कर्म करने चाहिए, इस ढंग से शरीर के धर्म का पालन करना चाहिए कि वो आत्मा के धर्म में सहायक हो, है ना। धर्म सुनिश्चिता पुंस विश्वक्सेन कथा सुहा ना उत्पाद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। हमने ऐसे व्यवसाय किए जिससे हमारे भगवान की कथा सुनने में प्रीति उत्पन्न नहीं हो रही, तो उसको क्या बोला गया है? श्रम एव ही केवलम। हम लोग पंजाबी भाग में हैं तो बुरा मत माने, कई पंजाबी वैष्णव भी हैं, वो श्रम एव केवलम नहीं बोलेंगे, बोले शरम एव ही केवलम। तो अगर शरम एव ही केवलम तो ठीक बोल रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक है। ये शरम आने चाहिए, हम ऐसे काम कर रहे हैं जिससे वो करके हमारी भगवान के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं हो रही, ये शर्म की बात है। शर्म ए भी केवलम, शर्म ए भी केवलम तो नहीं की बात है, क्योंकि ये बताया गया है शास्त्र में। शरीर इसलिए नहीं है कि अंधाधुंध मेहनत करो, काम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करो। अब थोड़ी सी बुद्धि लगाएं, जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए मेहनत कर रहे हैं भाई? इतनी भागदौड़ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, वो तो होंगी नहीं पूरी, हो ही नहीं सकती, क्योंकि कंपेटिबल ही नहीं है। आप उल्टी सीधी इच्छाएं करो जो कि इस संसार में पूरी हो ही नहीं सकती, फायदा क्या? तो इस ढंग से हमने धर्म और अर्थ को समझना है। ये धर्म की परिभाषा स्पष्ट होनी चाहिए। हमारा कर्तव्य क्या है? बहुत कम समय हमारे पास, तदपि अध्रुवम अर्थदम, मनुष्य शरीर कभी भी समाप्त हो सकता है, इसको अर्थदम बनाएं। क्या? भागवत धर्म का पालन करके, कौमारम आचरत प्राग्यो धर्मान भागवतम नहीं ही। इसी जीवन में हम 5 वर्ष की आयु से ही हमें शुरू कर देना चाहिए, लेकिन आजकल तो ऐसा कोई प्रशिक्षण नहीं है। तो इस श्लोक में बताया गया कि धन का उपयोग, धन का उचित फल केवल धर्म है। इसी ढंग से भागवतम के पहले स्कंध के दूसरे अध्याय में सुध गोस्वामी जी को, सुध गोस्वामी जी बताते हैं, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, धर्मस्य ही अपवर्गस्य नार्थो अर्थाय उपकल्पते, नार्थस्य धर्म एकांतस्य कामो लभ्यते ही स्मृता। जितने भी प्रकार के हमारे कार्य हैं शारीरिक स्तर पे, उनका निश्चित रूप से उद्देश्य है कि हम मोक्ष की प्राप्ति, अपवर्गस्य, इस संसार से बाहर निकले, और उनको कभी भी भौतिक उन्नति के लिए नहीं करना चाहिए। आप देखिए आज के संसार में कोई बात सुनेगा तो फिर मैं काम क्यों करूं, बोले काम भौतिक उन्नति के लिए करना ही नहीं चाहिए। मतलब फैक्ट्री खोल रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, हम किसके लिए करते हैं? भौतिक उन्नति के लिए। भागवत तो बता रहा है भाई ये तो करना ही नहीं चाहिए। धर्म से ही अपवर्गस्य, ऐसे तरह के धर्म काम करने चाहिए जो कि अपवर्गस्य, मोक्ष की तरफ ले जाए। तो बोले फिर क्या होगा? फिर ना अर्थस्य धर्म एकांतस्य, लेकिन कुछ काम करेंगे धन तो मिलेगा ही। तो लेकिन इन ऋषियों के द्वारा कहा गया है कि जो मोक्ष के लिए अग्रसर हैं, उनको कभी भी ये जो धन का उपयोग इंद्र तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो कुछ स्पष्ट हो रहा है कि धर्म क्या है और अर्थ क्या है, दोनों का, धर्म और अर्थ का आपस में क्या संबंध है, क्या संबंध है धर्म और अर्थ का आपस में? हाँ जी, हाँ, अर्थ का उपयोग धर्म के लिए करना चाहिए, और अंततः ऐसे हमें शारीरिक स्तर के भी ऐसे कार्य करने चाहिए कि वो हमें मोक्ष यानी कि कृष्ण प्रेम की ओर अग्रसर करें। अब जैसे कि ये नारद मुनि जी ने वसुदेव जी को उत्तर दिया, अगर हम देखें कि अगर हम अपने धन का उपयोग भगवान की सेवा में करते हैं, देखिए भगवान ने दर्शन दे दिए हमें, श्रीलाल राधिका रमन कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, तो हम देखते हैं कि आप अरब कंट्रीज में जाएंगे तो वो लोग जो धन कमाते हैं, धन कमा के अपना घर बनाने से पहले सबसे पहले मस्जिद बनाते हैं। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज अपने एक लेक्चर में बता रहे थे, वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में गए थे, गल्फ कंट्रीज में, तो बोले हर मोड़ पे एक मस्जिद है, हर मोड़ पे एक मस्जिद है, सीखना चाहिए। वो प्रतीक्षा करते अपना घर पहले नहीं बनाएंगे, पहले मस्जिद बनाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, आप जाएंगे गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा में सब पहले अपना मकान बना के आते हैं, ईंटें रखी होती हैं साथ में, क्या मेंटेलिटी है, वहाँ अपना मकान पहले, मतलब मंदिर तो बनाना ही नहीं है, सोचना है अपना घर पहले, भगवान को इस्तेमाल करना है बस। तो इस ये कितनी हमारी गलत और संकीर्ण मानसिकता है। लेकिन अगर हम उल्टा करेंगे तो भागवतम के संदेश के अनुसार चलेंगे तो हमें कितने लाभ होंगे। अब देखिए हमारा जीवन कितना सुखमय हो जाएगा। सबसे बताया गया कि हम देखते हैं कि अगर हम धन का उपयोग अपने भगवान की सेवा में लगाते हैं, और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान की सेवा करने के लिए ये कृष्णावन भावृत आंदोलन तो असीमित अपॉर्चुनिटीज देता है। इतने मंदिर बन रहे हैं, इतने पुस्तकों का वितरण हो रहा है धड़ाधड़, ये तो कुआ है, जितना आप धन डालेंगे सब धर्म का तो उतना प्रचार करना है, इतनी आवश्यकता है, सबको हम सेवा में लगा सकते हैं, और सबको सेवा में लगने से क्या क्या लाभ होगा? इससे हमें भक्तों की कृपा मिलती है। नंबर एक, कैसे भक्तों की कृपा मिलती है? आप सबने राजा मृग की कथा सुनी होगी, राजा मृग कृष्णा पुस्तक आपने पढ़ी होगी, तो बहुत बड़े दानी थे, कितनी गायें दान करते थे ब्राह्मणों को, बड़े बड़े दानी के रूप से जाने जाते थे, और उनसे एक थोड़ी सी गलती हो गई, उनको छिपकली बनना पड़ा, फिर भगवान ने आए उनको हाथ लगाया, बाया हाथ लगाया, उनका अपना स्वरूप प्राप्त हो गया, उनको भगवान के दर्शन हो गए। अब ये बात अगर हम सोचें, इसको एनालाइज करें, राजा मृग ने तो केवल कर्मकांड करते थे, कैसे उनको भगवान के दर्शन हो गए? विचित्र बात है। जीव गोस्वामी जी ने, अन्य आचार्यों ने बड़ी टीकाएं दी, कैसे हो गया, समस्या की बात है, कर्मकांड करके भगवान के दर्शन मिल गए, ये संभव कैसे है? उनके अंदर से वो राजा अम्बरीश की तरह तो थे नहीं, तो ये कैसे हो गया? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी इसमें बहुत सुंदर टीका देते हैं, बोले हम खुलासा करते हैं क्यों उनको दर्शन हुए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं जब ये राजा था, इसने क्या किया, इसके पास एक ब्राह्मण आया जो बड़ा शुद्ध भक्त था, और ब्राह्मण अपने अर्चविग्रह की पूजा के लिए एक स्थान ढूंढ रहा था। तो इस राजा निंग ने क्या किया, दानी जो था उसने उस ब्राह्मण के लिए एक मंदिर बना दिया कि चलो आप अपने अर्चविग्रह की पूजा इसमें करो। और ब्राह्मण दरिद्र था, उसको शास्त्र अध्ययन करने के लिए कोई शास्त्र भी नहीं थे, और राजा निंग ने उसको कुछ शास्त्रों का दान कर दिया, उनको शास्त्रों का दान कर दिया, उसके लिए एक मंदिर बना दिया। ब्राह्मण तो बस प्रसन्न हो गया। ब्राह्मण ने बोला आपने इतना अच्छा किया, आपको भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे। और राजा निंग ने बोला अच्छा भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए, तो अच्छा आप बोल रहे तो उसके अंदर इच्छा उत्पन्न होगी, चलो दर्शन कभी तो होंगे। और ब्राह्मण ने वचन दे दिया आपको दर्शन मिलेंगे। वो कर्मकांडी व्यक्ति था, भगवान ने उसका उद्धार किया और उसने साक्षात भगवान के दर्शन किए। देखिए ये हमें भक्तों की कृपा मिलने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी धन हमारे पास है किसके लिए करें, पुस्तक वितरण के लिए और मंदिरों के निर्माण के लिए। ये आप पढ़ सकते हैं श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 64वें अध्याय के 25वें श्लोक के तात्पर्य में कमेंट्स दिए हुए। दूसरा हम देखेंगे अगर हम धन का उपयोग पूरे धर्म के प्रचार में लगाते हैं तो इसमें वास्तविक हमें संपन्नता प्राप्त होती है। आज के समाज में बड़ी एक विचित्र विडंबना है, लोग पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन संपन्न नहीं। कह सकते हैं आप संपन्न हैं? नहीं, सबके सब दुखी, सबके सब। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बताते हैं कि दरिद्र की क्या परिभाषा है। भगवान कहते हैं दरिद्र या तो असंतुष्ट, दरिद्र तो वो है जो कि असंतुष्ट होता है। अरे आपके पास लाखों करोड़ों बैंकों में भरे पड़े हैं, स्विस बैंक में अकाउंट्स हैं, लेकिन आप परेशान हो तो आप दरिद्र हो, क्या फायदा इसे धन का। और अमीर कौन है तो बोलते हैं गुणा आद्य हृदय उच्चते, अमीर व्यक्ति वो है जो कि अच्छे गुणों से संपन्न है, वो धनी व्यक्ति है, क्योंकि अच्छे गुण ही हमें संपन्नता लाएंगे। तो अगर हम अपने धन का जो भी हमारे पास है भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हमारे अंदर अच्छे गुण हम विकसित करते हैं और असली संपन्नता को प्राप्त करते हैं। जैसे सन 2008 में भगवत दर्शन पे एक आर्टिकल आया था बहुत सुंदर, शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ये कथा थी बॉम्बे के एक चाल में एक व्यक्ति रहता था सतीश नाम का, और बॉम्बे चौपाटी से 3 भक्त उसको देखने गए, दर्शन करने गए उसका। उसकी विशेषता क्या थी, चाल आप जानते हैं बॉम्बे में, उसका एक कमरा था 10x12 फिट का, बड़े घूमते फिरते उसके ऊपर चढ़ कमरे में गए और कमरे के अंदर एक ही कमरा था, उस कमरे में 2 फिट के थे जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा, और उस कमरे में 2-3 स्त्रियां, वो एक ही कमरा था उसमें उनका बेड भी था और 2-3 चूल्हे रखे हुए थे, 56 भोग बन रहे थे। अब सोचिए 10x12 फिट के कमरे में 2 फिट ऊंचे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, उनका आल्टर भी और रसोई भी है और बेड भी है, सोने का भी वही कमरा, रसोई भी वही है और आल्टर भी वही है, सब कुछ वही है। तो बोला यार क्या है इतना, और कहीं पे कंफ्यूजन नहीं है, शोर मचरा है, सब तंगी हो रही है, जो पीछे भाग दौड़ नहीं, बड़े प्रेम से सब हो रहा है काम। तो बड़े हैरान हो गए भक्त, इतना बढ़िया वातावरण कैसे, कहाँ से आए भगवान, क्यों ऐसा हो रहा है। तो फिर सतीश जी ने कथा सुनाई पूरा, अच्छा पढ़िए डिटेल में, बहुत बढ़िया। तो सतीश ने बताया कि 2003 की रथ यात्रा में जगन्नाथपुरी गया था, बहुत अच्छा लगा। बाद में उसमें क्या हो कि रथ पे चढ़ा देते हैं लोग, दर्शन करते हैं जगन्नाथ जी को, आलिंगन करते हैं, मैं भी चढ़ गया, धक्का मुक्की होते हुए पता नहीं क्या हुआ, मैंने देखा है क्या है, बिल्कुल मैं जगन्नाथ साहब चिपटा हुआ एकदम, उनके चेहरे पर मेरा चेहरा है और मैं देखा ये क्या हो गया, और मेरे हाथ मैंने उनकी नाक को छुआ, बड़ी सॉफ्ट, मैंने ये लकड़ी के कैसे हो सकते हैं, जब बड़े जबरदस्त है, मेरा इतना आकर्षण हो गया, मैं पागल हो गया और मैं घूमने लगा ऐसे। तो अचानक मुझे दुकान में जगन्नाथ जी का एक विग्रह दिखाई दिया जो बिल्कुल हूबहू उस जगन्नाथ जी के तरह थे, तो मेरी इच्छा उत्पन्न हुई उसको लेना है। लेकिन जाके पूछा तो पैसे बहुत थे, ठीक है। तो वापस आ गया बॉम्बे में और खूब कमाई की उसने, खूब इधर उधर से जुगाड़ किया और 9000 रुपये इकट्ठे किए, और फिर दोबारा से जनवरी 2004 में गया जगन्नाथपुरी में, बोले ये जगन्नाथ जी चाहिए। अब उसको दुकान नहीं मिल रही, बेचारा भटक रहे इधर उधर, परेशान हो गए सुबह से रात हो गई, कहाँ नहीं। अचानक उनको वही जगन्नाथ के दर्शन सामने हो गए, वही दुकान आ गए, और बोले उसे धूल पड़ी हुई थी लेकिन पहचान लिया ये जगन्नाथ जी चाहिए। जाके बात की 8000 में उनको जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी मिल गए, फिर बॉम्बे लेके आए और बॉम्बे में खूब स्वागत हुआ, रथ यात्रा निकाली गई। और उन्होंने जगन्नाथ जी को प्रॉमिस किया था जब रथ यात्रा में गए थे, जब उसके दुकान में देखा कि आपको मैं ले जाऊँगा और आपको मैं 56 वो खिलाऊँगा, तो ठीक है जी। आगे अब 7 दिन तक लगातार 56 भोग खिलाया और फिर उन्होंने बोला कि अब रेगुलर खिलाएंगे और हर सप्ताह को 56 भोग खिलाते हैं। तो भक्तों ने सुना हर सप्ताह 56 भोग, उस दिन भी शनिवार था। बोले यार कितना खर्चा हो जाता है? कहता है 1 56 भोग में 1000 रुपये लग जाते हैं। बोले आपकी तनख्वाह कितनी है? बोले 6000 रुपये। 6000 तनख्वाह है, 4000 चले गए 56 भोग में, कैसे कैसे संभव है? कहता पता नहीं कैसे हो रहा है, हो रहा है। जब से जगन्नाथ जी आए हैं क्या हुआ, मेरी तनख्वाह भी बढ़ गई है, पिताजी की भी थोड़ी सी कहीं इनकम से आ जाती है और ऐसे सब मिलके करते हैं सहयोग। एक सब्जी वाला है उसको मालूम चला कि 56 भोग के लिए आता है, वो भी ऊपर देखने आया, वो भी इतना आकर्षित हो गया, सब्जियाँ मेरी तरफ से चलो। और एक साथ में पड़ोसी में एक दर्जी है तो हर शनिवार को नई ड्रेस 56 भोग के समय। देखो ऐश्वर्य कैसे भगवान अरेंजमेंट करते हैं। बोले कैसे हो जाता है? बस दर्जी आता है, देखता है भाई चलो ड्रेस मैं दे दूंगा, नया ड्रेस हर शनिवार को, फूल वालों ने फूल दे दिए। बोले जो भी निकलता है पड़ोस से वो दर्शन करते हुए जाता है इनके जगन्नाथ जी के। और बिल्कुल हमारे चाल के सामने एक व्यक्ति रहता था शराबी कबाबी, वो भी दर्शन कर लेता था ऐसे करके और धीरे धीरे उसकी शराब छूट गई। अब वो वहां से यूं नहीं करता, वो आरती करता है जगन्नाथ जी की। देख कमाल है, 6000 कमाने वाला व्यक्ति सोच भी ऐसे सकता कि हर हफ्ते मैं 56 भोग खिलाऊंगा, वो तो अपने किल्लत में पड़ा रहेगा, परेशान रहेगा, फ्रस्ट्रेटेड रहेगा। ये इतनी शक्ति है, ये संपन्नता है, ये संपन्नता बड़ी बड़ी कोठियों में रहना, ये संपन्नता नहीं, अंदर से आप दुखी है, असंतुष्ट है, क्या संपन्नता है? कुछ तो हम बुद्धि का उपयोग करें, क्या चाहिए? सुख चाहिए ना, ये सुख मिल रहा है क्या? जितने पास जिनके पास धन इकट्ठा कर कोई सुखी है नहीं है, तो संपन्नता भगवान की सीमा में लगेंगे तो अपने आप ये पता नहीं कैसे भगवान अरेंजमेंट्स करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, और जब ऐसे चलता रहा उसका पता नहीं क्या जुगाड़ हुआ, कहाँ नौकरी मिल गई, बदल गई, उसकी तनख्वाह और बढ़ गई। अब उसने क्या किया, एक चाल का 1 करोड़ कमरा साथ में ले लिया और इस जो कमरे को पूरा का पूरा भगवान का मंदिर बना दिया और उसमें एयर कंडीशनर भी लगा दिया। क्या देखिए क्या ऐश्वर्य है। तो जब हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो वास्तविक संपन्नता आती है। तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए मेरा क्या होगा, अरे भगवान किस लिए है। और हम देखते हैं खोला बच्चा श्रीधर 2 पैसे कमाते थे, 1 पैसा भगवान गंगा जी की सेवा में। इसी ढंग से भगवान दूसरे भक्त वासुदेव दत्त वो भी ऐसा करते, 2 पैसे कमाई, 1 पैसा गंगा जी की सेवा में। अब चिंता कौन कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु, भैया तू 1 पैसा गंगा की सेवा दे दे, तेरा परिवार का पालन कैसे हो। उन्होंने शिवानंद सेन को उसका अकाउंटेंट बना दिया, भैया उसको अकाउंटेंट बनो। 2 पैसे की मासिक आय में एक अकाउंटेंट बने हुए शिवानंद सेन। भगवान चिंता कर रहे हैं कि यार इसका क्या होगा, तो पागल है पता नहीं, सब कुछ सेवा में लगा देते। तो असली संपन्नता आती है भक्तों की, हमें कृपा मिलती है। इसी ढंग से हम देखते हैं, अभी हम नासिक में गए थे, आपने कितने वक्त गए थे नासिक अभी, है ना? तो आपको याद होगा हम काला राम मंदिर में गए थे। तो काला राम मंदिर को बनाया था एक पेशवा ने जिनका नाम था रंगराव उडेकर। रंगराव उडेकर ने 17वीं शताब्दी में आज से 400 वर्ष पूर्व इस मंदिर को बनाया था। एक पत्थर से बना हुआ है, सिंगल स्टोन से मंदिर बना हुआ है, बहुत सुंदर भगवान के विग्रह, स्वयंभू विग्रह है सीता राम लक्ष्मण जी के, और काले रंग के, एकमात्र ऐसा मंदिर है विश्व जो काले रंग के हैं, जो कि स्वयं प्रकट हो गए थे। और एकमात्र पत्थर से बना हुआ है, भगवान स्वयं सपने में आए और बोले कि मेरे लिए मंदिर बनाओ। उस समय उन्होंने 17वीं शताब्दी में 400 वर्ष पूर्व 23 लाख रुपए खर्च किए इस मंदिर को बनाने, और बिल्कुल कंगाल हो गए, कुछ पैसा नहीं, और मंदिर अभी पूरा हुआ नहीं था। गोपुरम में ऊपर सोने का कलश लगाना था, क्या करें, इन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी के सारे गहने बेच दिए और गहने बेचकर उस पर सोने का कलश लगाया और फिर अपना नाम कहीं लिखा रंगेरा उडेकर मंदिर। उन्होंने भगवान के चरणों के नीचे थोड़ा सा अपना नाम है कि मैं हमेशा आपके चरणों में रहूं, तो ये भाव होना चाहिए। इसी तरह से जयपुर में सब राधा गोविंद देव जी पूरे जयपुर के मालिक बोले जाते हैं अभी भी। ये वैदिक संस्कृति है, एक मंदिर होता था वो हमारा केंद्र बिंदु होता था और पूरा का पूरा समुदाय जुड़ता था सेवा के लिए। माधवेंद्रपुरी ने गोवर्धन में गोपाल जी की स्थापना की, पूरा का पूरा ब्रज सेवा में जुड़ गया। तो यही जीने का तरीका है असली, और इसी में संबंध आएगा। फिर हम देखते हैं इस अध्याय में जो श्लोक नारद मुनि ने सुनाया था वसुदेव जी को, उसमें बताया गया है कि ज्ञानम सविज्ञानम अनुप्रशांत है। ग्रस्त आश्रम में रहने लोगों में इतना उनको समय नहीं मिलता कि शास्त्रों का अध्ययन कर सके, जान सके, लेकिन होते हैं केवल इतना करने मात्र से ही, अपने धर्म को धर्म के प्रचार में लगाने मात्र से ही सारे का सारा उनको धार्मिक विज्ञान, फिलोसफिकल ट्रुथ सब अपने आप रिवील हो जाएंगे, अपने आप उनको भक्तों का संग मिलेगा, बार बार कथा सुनने को मिलेगी। आप में से कितने भक्त यहाँ पे हैं जिन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत भगवत गीता के डोनेशन से शुरू की थी, कि भक्त लोग आपके पास आए थे, भगवता मांगी थी, आपने चाहे अनचाहे कैसे भी करके भगवता दी, और आज आप यहाँ बैठे हैं कथा सुनने, हाथ खड़ा करेंगे कौन कौन से? देखिए अपने महावीर प्रभु हैं, दर्पण प्रभु हैं, प्रभु क्या नाम आपका? अनिता जिंदल माता जी हैं, अनिता जिंदल माता जी से हमने गए थे कहीं 2005 में आए थे, मतलब सिक्स आए थे, राकेश अबरा को इंट्रोड्यूस कराया, माता जी ने बड़ी अच्छी अमाउंट में गीता की, तब से हमने हर वर्ष जो गीता मैराथन की शुरुआत है, उन्होंने बोला आपका नाम ए से शुरू होता है तो हम आपसे शुरू करेंगे, एंड शी वॉज सो एनकरेजिंग एवरी ईयर, शी इज सो एनकरेजिंग, और इतने अच्छे ढंग से माता जी ने भाग लिया ना, आप जानते हैं प्रतिदिन मंगल आरती आती है, 16 वाला का जप करती है, 4 नियमों का पालन करते हैं और दीक्षा लेने के लिए बहुत आतुर है। देखिए ये क्लियर है, जो ऐसे भगवान की सेवा में जुड़ता है निश्चित रूप से कृपा, सारे के सारे फिलोसफिकल ट्रूथ सब कुछ मालूम चल जाते हैं, और साथ में उसको ज्ञान चक्षु मिलते हैं जिससे कि वो समझ सकता है कि जड़ क्या है, चेतन क्या है, सनातन क्या है, नश्वर क्या है, क्या सुख है, क्या दुख है। ये बातें सुनने में छोटी छोटी लग रही हैं, लेकिन आजकल के लोग इसी में तो कंफ्यूज हैं, जड़ को चेतन समझ रहे हैं, चेतन को जड़ समझ रहे हैं, सुख को दुख समझ रहे हैं, दुख को सुख समझ रहे हैं। तो सारे का सारा ज्ञान हृदय में प्रकट होता है भगवान और भक्तों की कृपा से, अगर हम अपने धन का उपयोग सही तरीके से करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वास्तविक जो शांति है, इस श्लोक में बताया गया है कि अनुप्रशांति, अनुप्रशांति का अर्थ है कि उसको वास्तविक शांति प्राप्त होती है, 3 ताप के भय से वो मुक्त हो जाता है। और हम देखें ये धर्म की सेवा में धन लगाना, इससे बढ़िया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं सकता। अगर एक बिजनेसमैन व्यक्ति है, बोले क्यों भैया मैं कमाऊं मैं और दे दूं भगवान, क्या मतलब हुआ, ये क्या तरीका थोड़ी है, मेरे को क्या मिलेगा, है ना? तो ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखते कि मैंने दे दिया जी आपको प्रचार में दे दिया, मुझे क्या मिलेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका इसके ऊपर हमारे ऐसा बोले, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति को दान देते हैं जो ठीक है योग्य व्यक्ति है लेकिन ब्राह्मण नहीं है, तो क्या होगा, अगले जीवन में जितना दान दिया उतना आपको मिल जाएगा, गारंटीड है। इसको आप स्पिरिचुअल हवाला भी बोल सकते हैं। अगर आपने दान नहीं दिया कहीं पे, वो तो खत्म हो गया, सबका सब रह गया, भैया मैं अगले जीवन में पैसा मिलना चाहिए, क्या करूं, यहाँ तो बैंक सब खत्म हो जाएंगे, टूटेंगे, तो दे दो किसी को, दान दे दो बस, कुछ ना करो, योग्य व्यक्ति को पकड़ो ले यार दान देते, उसको बोले क्या ले ले बस, क्या अगले जीवन में मिलेगा ही मिलेगा, गारंटेड है, हवाला है कि नहीं बोलो। बोले ठीक है, ये तो हुआ आम व्यक्ति को, लेकिन अगर हमने जो ब्राह्मण नहीं है तो सेम प्रपोर्शन में मिल गया, ऐसा व्यक्ति मिला जो आधा ब्राह्मण है तो कितना मिलेगा पैसा, डबल, आधा ब्राह्मण दुगना पैसा कमा लोगे। और अगर हमने ऐसे व्यक्ति को दिया जो पूर्ण ज्ञानी ब्राह्मण है, सब कुछ जानता है योग्यता में, उससे दोगे कितना मिलेगा, 1000 गुना, नोट कर लो फटाफट से, और ये स्कीम है। और अगर कोई ऐसे व्यक्ति को दान देता है जो वेद पराग है, जिसने वैदिक सत्य को पूरा साक्षात्कार किया हुआ है, ऐसी भक्ति वेदांत, स्वामी शीला प्रभुपाद वेदांत का जो अंत है भक्ति है, जिसने पूरे वैदिक तथ्य का बिल्कुल अंगीकार किया हुआ है, इसमें कितना रिटर्न मिलेगा, बोलेंगे अनलिमिटेड मल्टीप्लीकेशन, असंख्य असंख्य असंख्य, और विशेषकर अगर पुरुषोत्तम मास में दिया जाए तो क्या कहें, उसकी गिनती नहीं कर सकते, ये हम नहीं कहें, कहा गया करोड़ों करोड़ करोड़ इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी कितना हो, कह नहीं सकते, इतना लाभ तो केवल कोई अगर बिजनेसमैन है भैया मैं तो यही सोचूंगा, तब भी देखो कितनी बड़ी बात है। और हम देखते हैं ये जो कलयुग है इसमें इतने दोष है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं इन दोषों से छुटकारा हमें मिलेगा अगर हम संकीर्तन को फैलाएंगे, और संकीर्तन फैलाने के लिए ये जो धर्म है कलयुग का, धर्म केवल चर्चा का विषय नहीं है। हाँ संकीर्तन होना चाहिए, हाँ जी संकीर्तन करने का विषय है, चर्चा का विषय है। अब कुछ भी चीज करने के लिए प्रभुपाद कहते हैं उसमें संपत्ति चाहिए होती है, मैन पावर चाहिए होता है, लक्ष्मी चाहिए होती है, सब चाहिए होता है। तो जितने भी आप धन कमा रहे हैं इसको संकीर्तन आंदोलन में लगाएं, तभी हम कलयुग के प्रभाव से बच सकते हैं, एकमात्र इतना है। तो ये हमारे लिए भी हितकारी है, पूरे समाज के लिए हितकारी है। और अगर हम नहीं करते तो पूरा समाज चोरों का समाज है और दुख ही दुख है। और जो गृहस्थ आश्रम में भक्त गृहस्थ आश्रम में रहने वाले भक्त हैं उनका क्या कर्तव्य है कि जो बाकी जो वर्ण और आश्रम है उनका, बाकी जो आश्रम है उनका वो पालन करें। बाकी कौन से आश्रम है? ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ और सन्यास। हम इसलिए धन कमा रहे हैं। अब इस विषय में भागवत धर्म के चौथे स्कंध में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रसंग आता है, पृथु महाराज और चार कुमारों का। पृथु महाराज के कक्ष में स्वयं भगवान ने उनको दर्शन दिए जब यज्ञ स्थली में इंद्र और पृथु महाराज के बीच में जब वो यज्ञ में इंद्र ने उत्पात किया था और फिर भगवान वहाँ प्रकट हुए, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। फिर भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि आपको सबसे बड़ा क्या चाहिए। पृथु महाराज ने मांगा कि मुझे अपने शुद्ध भक्तों का संग दीजिए। तो भगवान ने बोला आपकी ये आशीर्वाद आपको दिया जाता है कि जल्द शीघ्र ही आपको चार कुमार के दर्शन होंगे। तो चार कुमार प्रकट हुए, उन्होंने बहुत सुंदर उपदेश दिए। और जब वो जाने लगे तो पृथु महाराज ने बोला मैं आपको क्या दूँ, मैं क्या दे सकता हूँ आपको, मेरे पास जो कुछ भी है वो तो साधु उच्चिष्टम है, ये भावना है। जो कुछ भी मेरे पास है वो तो साधुओं का उच्चिष्ट है। अब जो साधुओं का उच्चिष्ट है मैं साधुओं को वापस कैसे दे सकता हूँ, आपका उच्चिष्ट आपको कैसे दूंगा। फिर भी जो कुछ भी मेरा है, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरा राज्य, सब कुछ आपका है। और प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जो राजा का जो धन होता है, ट्रेजरी कोष होता है, वो तो उसने दिया ही दिया, लेकिन राजाओं का अपना एक पर्सनल कोष भी होता है जिसको बोलते हैं रत्न भंडार। तो पृथ्वी महाराज कह रहे हैं ये भी आपका। तो कोई पूछ सकता है अरे भैया अभी आप बोल रहे साधु उच्चिष्ट है और फिर आप वापस साधुओं कैसे दे सकते उनका उच्चिष्ट। तो इसमें सीधे स्वामी जी लिख रहे हैं क्यों नहीं दे सकते। जैसे कि एक सेवक अपने मालिक को खाना परोस के देता है, खाने का सारा सामान कौन लेके आया था? मालिक। सेवक ने तो खाली खाना बनाया और दे दिया, तो वैसे ही है सब कुछ, तो साधुओं का ही है, हमने तो परोस के उनको दे दिया। इसके अगले श्लोक में फिर पृथु महाराज कहते हैं ये चौथा स्कंद 22वां अध्याय 46 नंबर श्लोक, समेव ब्राह्मणो भुंक्ते स्वम वस्ते स्वम ददाति च तस्य वानुग्रहणानां भुंजते क्षत्रिय आदया। बहुत सुंदर इसका अर्थ है, सीधा से सुनिए प्लीज। क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र केवल ब्राह्मणों की कृपा से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उल्टी बात कह रहे हैं, हम तो कह रहे थे कि जो ब्राह्मण है वो निर्भर करता है क्षत्रिय और वैश्यों पे, लेकिन यहां पृथु महाराज कह रहे हैं क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र केवल ब्राह्मणों की कृपा से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। केवल ब्राह्मण ही ऐसे हैं जो अपनी ही संपत्ति का भोग करते हैं और अपने कपड़े पहनते हैं और अपना ही धन दान में देते हैं। कह रहे हैं कि वास्तव में सारी की सारी जो संपत्ति है वो ब्राह्मणों की है। ये तो ब्राह्मण विनम्रतावश दान मांग रहे हैं और ये ब्राह्मणों की कृपा है कि बाकी जो वर्ण है उनको खाना मिल रहा है, बाकी वर्ण ब्राह्मणों को नहीं खिला रहे, ब्राह्मण खिला रहे हैं बाकी वर्गों। कैसा लग रहा है तुमको? ब्राह्मणों की कृपा से हो रहा है। और क्योंकि ब्राह्मण प्रचार करते रहते हैं, उनके पास इतना समय नहीं है कि धन रखें, उसका अकाउंट रखें। तो एक गृहस्थ आश्रम में रहने वाले जो भक्त हैं वो एक बैंक की तरह है, सेविंग अकाउंट है। और जितना धन चाहिए ब्राह्मण को प्रचार के लिए, बैंक में जाएगा, चेक काटेगा, ले लेगा। वो जो चेक काउंटर में बैठा हुआ व्यक्ति नहीं बोलेगा इतना क्यों ले रहे हो, जो चेक काटा चुपचाप दो, ये पैसा है ही नहीं आपका, केयर टेक करो आप तो खाली, मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं मेंटेन करूं, आप मेंटेन करो और मुझे चाहिए दो चल। और बोल रहे हैं कि ब्राह्मण निर्देश देता है क्षत्रिय वैश्यों को कि कितना धन लाओ, मेरे को इतना चाहिए, और चलो काम करो, जाओ धन लाओ, और यहाँ पे नया सेंटर खोलना, मंदिर खोलना, चलो धन लाओ दो। और फिर जो क्लास आठ मेहनत कर रही, वो धन लाना चाहिए और फिर चेक काट के दे देना चाहिए। ये है, आप इसका तात्पर्य पढ़िए, प्रभात पूरा ये बता रहे हैं। ये जब ये जीवने का तरीका है, जैसे कि भक्ति सिन्हा सेठ ठाकुर महाराज ने प्रभुपाद को बोला कि जब तुम्हारे पास धन आए तो क्या करना है, पुस्तकें चाहिए। बस प्रभुपाद के लिए यही आदेश था। खूब मेहनत कर रहे प्रभुपाद बिजनेस में, खूब मेहनत कर रहे थे। किस लिए? इसके लिए। उनकी पत्नी, उनके ससुराल के लोग बड़े दुखी रहते थे प्रभुपाद से, क्या करते हैं, जो आता है कमाने लगा देते। नहीं, प्रभुपाद यही लक्ष्य था सब। और इसी ढंग से प्रभुपाद के पास एल्फ्रेड फोर्ड है, हिप्पी थे वो, बोले मैं तो पूरा ब्रह्मचारी बनूंगा। प्रभुपाद ने नहीं, वापस जाओ पैसा कमाओ कृष्ण के लिए। खूब धन कमाया उन्होंने और खूब धन दिया कृष्ण को। तो ये हमें समझना है कि ब्राह्मण की कृपा से ये धन क्या है और कैसे उनको भगवान की सेवा में लगाना है। अगर हम ऐसा नहीं करते, कंजूसी करते हैं, छोड़ो ना क्या करना है, ये सब तो कहने की बातें हैं, प्रैक्टिकल रहना चाहिए, कैसे होगा मेरा काम, घर का कैसे चलेगा। तो देखिए, सबसे अच्छा तरीका कि हम ये धन निकाल सकें भगवान की सेवा के लिए, यहाँ बताया गया है, सादा जीवन ऊंचे विचार। जब जीवन को हम सिंप्लीफाई कर देंगे, आप सबका भी एक्सपीरियंस होगा, जब से हम कृष्णा भानामृत में जुड़े हैं, आपके खर्चे कम हुए कि बढ़ गए हैं? आराम से खर्चे बहुत कम हो गए हैं, कम हो गए, आराम से अपना समय, अपनी शक्ति, अपना धन हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। और इसको जो धन किस ढंग से भगवान की सेवा में लगाना है, निर्देश में करना चाहिए। कई बार हम बहुत फैनेटिक हो गए, चलो जी ऐसे है, तो कई बार जैसे कि चैतन्य महाप्रभु चिंता कर रहे हैं, उन्होंने एक अकाउंटेंट लगाया, भैया इसको देखो जरा कैसे कर रहा है, दो पैसे भी कमाई थी। तो ब्राह्मणों के निर्देश में, कई ऐसे भक्त हैं जो हमें पूरा बताते हैं जी ये हमारी स्टेटमेंट है, बताइए क्या करना है, इसी आगे चल रहे हैं। और फिर गुरु बताएंगे, ब्राह्मण बताएंगे ऐसा करो, क्या परिवार की जरूरत है, कितना है, कितना आपकी वास्तविक जरूरत है, कितनी लालच है, कितनी जरूरत है, इस ढंग से हम इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कंजूसी करते हैं तो क्या बताया गया इसका, भागवतम के 11वें स्कंद के 23वें अध्याय में इसका वर्णन है, अवंती ब्राह्मण की कथा है। आप सबने सुनी होगी अवंती ब्राह्मण की कथा। अवंती ब्राह्मण की कथा में बताया गया, अवंती ब्राह्मण बहुत कंजूस था, घर में पैसा नहीं देता था, खूब धनवान था, इतना कंजूस व्यक्ति, घर वाले भी परेशान, और एक दिन देवता भी परेशान हो गए उससे। देवता ने बोला कि उसको कुछ करना चाहिए, उसके खेतों में आग लगा दी, सब जगह नुकसान हो गया, चोरी करवा दी, घरों ने लूट लिया, बिल्कुल सब खत्म। अब जब सब कुछ खत्म हो गया, तब उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न हुआ और ज्ञान उत्पन्न हुआ, बोला सब बेकार है। तब बताया गया इसमें कि एक कंजूस व्यक्ति के जीवन में जो धन होता है, कभी भी प्रसन्नता नहीं ला सकता, ये जीवन में खराब है और अगला जीवन भी खराब है। और इस धन को कमाने के लिए क्या करना पड़ता है, यहां बताया गया है इसमें, सभी मनुष्यों को संपत्ति की कमाई, प्राप्ति, वृद्धि, रक्षा, व्यय, हानि, उपभोग में भारी श्रम, भय, चिंता तथा भ्रम का अनुभव होता है। कमाना, रखना, व्यय करना, सब में इतना परिश्रम, भय और भ्रम। और इस धन का लालच करेंगे तो उसके 15 नुकसान बताए गए धन की लालच रखने के लिए। देखिए क्या क्या है, चोरी, हिंसा, असत्य भाषण, दोहरा बर्ताव, काम, क्रोध, चिंता, दर्द, झगड़ा, लड़ाई, शत्रुता, अविश्वास, ईर्ष्या, स्त्रियों के द्वारा उत्पन्न संकट, जुआ खेलना, नशा करना, ये 15 दुर्गुण संपत्ति लोभ के कारण मनुष्य को दूषित बनाने वाले हैं। क्यों इन चक्रों में फंसे, आराम से जो लक्ष्मी मिलती है उसको भगवान की सेवा में लगाएं बस। तो हम सब तो इतने सौभाग्यशाली हैं, यहाँ पे दिल्ली में 12 मंदिर बने, धड़ाधड़ खूब जो हम धन कमाएं भगवान की सेवा में लगाएं। और जब हम देखें जो हम भगवान की सेवा में इस कृष्ण कॉन्शियस आंदोलन में जो धन लगाते हैं, हमारा सौभाग्य सीधा भगवान की सेवा में जा रहा है, क्योंकि इसी भक्तिविदान स्वामी प्रभुपाद जी को ये धन दिया जा रहा है। लेकिन हम लोग देखें जो हम धन दें, इसका प्रॉपरली अकाउंटिंग भी होना चाहिए, आप सबको इसका रिसीट मिलना चाहिए। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि जब तक वो धन अकाउंट फॉर नहीं होता, अकाउंट्स में नहीं जाता, हमारे बैंक में जमा नहीं होता, उससे पहले वो महामाया है। हमारे बैंक में चला जाता है, वो क्या बनती है, योग माया। तो इसका हम पूरा ध्यान रखें और भगवान की सेवा में अपने हम धन को लगाएं और अपने मनुष्य जीवन को सिद्ध करें। लेकिन इसमें जिसको धन दिया जा रहा है उनके भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। गरुड़ पुराण में बताया गया है किस ब्राह्मण को दान स्वीकार करना चाहिए। बोले कि उसी ब्राह्मण को दान स्वीकार करना चाहिए जो अपने ज्ञान और वैराग्य के द्वारा उस दान देने वाले की रक्षा कर सके। यानी कि अपने ज्ञान और वैराग्य में इतना उन्नत हो कि वास्तव में जो व्यक्ति धन दे रहा है उसका उद्धार हो। तो इसलिए जो ब्रह्मचारी आश्रम में है और संन्यास और वानप्रस्थ आश्रम में है उनकी भी जिम्मेवारी बन जाती है कि वो अपनी शुद्धता के स्तर को बनाए रखें और ज्ञान और वैराग्य में उन्नत हो। ये और वो केवल और किसी धन की चिंता ना करें, वो केवल अपने आप को शुद्ध बनाने का प्रयास करते रहें, सही ढंग से ज्ञान और वैराग्य में प्रगति करें और जो ग्रस्त आश्रम में भक्त हैं उनकी डिमांड पे पूरे धन को सप्लाई करते रहें ताकि दोनों मिलकर फिर धर्म का हम खूब जोर शोर से प्रचार कर सके। धर्मो रक्षति रक्षतः। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। ठीक है, हरे कृष्ण। प्रश्न या टिप्पणी, क्वेश्चन, कमेंट्स? यस, नमस्ते। माइक में
कृष्ण, थैंक यू जी, बहुत ही एक्साइटिंग एनालिसिस था जिस तरीके से काम धर्म इसका कनेक्शन। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मेरा कमेंट, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं बिल्कुल क्लैरिटी के साथ है, मेरा कमेंट जरूर है। जैसे आपने एक रिएक्शन, जनरल रिएक्शन, आप महाराज नृत्य कथा बता रहे थे जहाँ पर कि नृत्य ने क्या किया जिसके वजह से जो है उसे भगवान के दर्शन हुए, तो सारा जो वो था उसका जो मुझे जो मैं समझ पाया उसका जो क्रेडिट था उसका जो सारा उसके पॉजिटिव से कहने जो उसने किया जो जो ग्लोरियस पार्ट था वो ये था कि उसने उस ब्राह्मण को फैसिलिटेट किया दो जरियों से, एक मंदिर बनवा के दिया और दूसरे शास्त्र पढ़ने की फैसिलिटी बना के दी जिससे जो ब्राह्मण इतना खुश हुआ जिससे दर्शन हुआ। तो आमतौर पर हम लोग जो है जब वो कर रहा था वो मंदिर बनवा के दे रहा था जो कि उसका करणीय था जो हमारे लिए सीखने का जो एक साधक के नजरिए से है, सो समाव जब वो मतलब हाथ होती है तो कोई ताली नहीं बजती है, कोई ग्लोरीफाई नहीं करता। जब काम हो जाता है, जब दर्शन हो जाते हैं, सब सबका हरिबोल होता है। पर मुझे लगता है शायद हरिबोल और सराहना और ग्लोरीफाई करने का वो पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि जहां पर जब वो मेहनत कर रहा था।
गुड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, जो हमें करने वो देखना है कि हमें जैसे ब्राह्मण का आशीर्वाद कैसे मिला, मिल गया आशीर्वाद, ठीक है, आशीर्वाद कैसे मिला उसके लिए बोला जाएगा। इतना आसान तरीके इस पर ताली लाना चाहिए कि बस मंदिर बनवा दो और गीता दान कर दो, बहुत बढ़िया हो गया, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। गुड, थैंक यू। यस, ओके, ठीक है। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपको पुरुषोत्तम मास की बहुत बहुत बधाई। हाँ, ठीक है।
प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है, आपने जैसे बताया कि जो हार्ड अर्न मनी है ग्रस्त आश्रम में जो लोग हैं वो डोनेट करने से क्या बेनिफिट होता है वो आपने बताया, बट इन केस अगर कुछ ब्लैक मनी मतलब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जॉब अगर मिलता है तो वो तो ऑब्वियसली पूरा ही डोनेट करना चाहिए, तो उसको डोनेट करने से क्या भगवान प्रसन्न होते हैं, उससे कुछ बेनिफिट होता है
ब्लैक मनी?
इन केस
ये बातें कॉन्फिडेंशियल कर सकते हैं नहीं, लेकिन प्रभुपाद लिखते हैं ऑनेस्ट मीन्स ऑफ अर्निंग। देखिए, भगवान को हमारा पैसा नहीं चाहिए, भगवान बस इतना ऐश्वर्य, भक्तों को भी आपका पैसा नहीं चाहिए, भगवान को आपका सुंदर मन चाहिए। ठीक है ना? अब आपने ब्लैक मनी ले लिया, यहाँ जुगाड़ कर रहे हैं, वहाँ जुगाड़ कर रहे हैं, यहाँ झूठ बोल रहे हैं, यहाँ पे रिश्वत ले रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं, नो प्रभु जी 10 लाख रुपए नहीं चाहिए, जाओ। तो ऑनेस्ट मीन्स ऑफ अर्निंग ताकि मन हमारा दूषित ना हो। अपने आप ही आता है, कोई ना कोई लक लो प्रभु चलता है, आपकी सीटी ऐसी है, लिफाफे बरस रहे ऊपर से, है ना? वी शुड अवॉइड इट, वी शुड अवॉइड। एक बार प्रभुपाद के पास आए थे जुहू में, कोई बहुत सारा ब्लैक मनी लेके आए थे, प्रभुपाद बोला नहीं, सीधा हुंडी में जाएगा, टेम्पल कंस्ट्रक्शन में लग जाएगा, सीमेंट सरिया में चला जाएगा, लेकिन हम भक्तों को उसका प्रशासन नहीं खिलाएंगे। हाँ, यस
जी, कल कहली ये सुना है कि एक प्रभुपाद डिसाइपल ने बोला, प्रभुपाद इफ वी हैव ब्लैक मनी तो शुड वी डोनेट, Prabhupada said ki, if we have two gods, one white and one black. White is Balram and black is Krishna.
Yeah.
No problem, whatever you have, give to Krishna and Balram.
That's okay, that's also a good part, because ultimately every money is, all money belongs to black man. It's black money only. Aur lekin grasthon ke liye jo hai is chakkar mein nahi ki mujhe black money kama ke bhagwan ko deni hai, ye hamara jeevan ka lakshya nahi hai. Haan, lekin aa gaya kisi ke paas wo hai koi chodi de diya, theek hai, kahin aur jaane se acha hai. But as for us, hamara honest means of earning rakhe. नहीं, जाति के आधार पे बापड़े योग्यता गया था. नहीं नहीं, जाति के आधार पे तो धोखा हो जाएगा हमसे, वो तो कुछ भी नहीं मिलेगा हमें. अगर जाति के आधार पे नहीं, धर्म के आधार पे दिया तो हो सकता है नरकों में जाना पड़े हमें, वापस ले लिया जाएगा. योग्यता के आधार पे देना होगा.
तो हम कैसे तय करेंगे प्रभु जी की ये आधा ब्राह्मण है, ये साधा है? जो कुछ
आपको सीधा वेद प्राग दे दिया ना प्रभुपाद जी, आप क्यों आधे ब्राह्मण को ढूंढ रहे? ये बोल रहे हैं, ये बात कैसे समझे कि सारा धन ब्राह्मणों के और क्षत्रिय वैश्य पर निर्भर है? अरे ब्राह्मण लोग यज्ञ करते हैं तभी वर्षा होती है, तभी अन्न उत्पन्न होता है, सब कुछ तो ब्राह्मणों का है. वो बोले सब साधु चिष्ट, सब जो रिप्रेजेंटेटिव कौन है? ऑल लक्ष्मी बिलोंग्स टू नारायण. और नारायण के रिप्रेजेंटेटिव कौन है? के शुद्ध भक्त. हम तो उन्हीं का है, उन्हीं के मार्गदर्शन में सब कुछ होना चाहिए. बात सबसे भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्ण. पुरुषोत्तम मास में दिया गया दान का बहुत लाभ बताया गया है, तो जो आपके प्लान्स हैं तुरंत एग्जीक्यूट कर दीजिए. हरे कृष्ण.